الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى مع بعض. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام، دین خیر خواہی کا نام ہے کا مطلب خیر خواہی کرنا، بھلائی چاہنا دوسروں کی، اتنا زیادہ ہے دین میں کہ گویا پورا دین وہی ہے. حالانکہ دین میں اور بھی بہت سے کام ہیں، بہت سے احکام ہیں، لیکن یہ کام اتنا بڑا ہے اور اتنا اہم ہے کہ پورے دین کا لفظ اس کے لیے بولا گیا. جیسے اسلام میں ایمان میں نماز اتنی بڑی ہے کہ نماز کو ایمان بولا گیا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا. یہاں اس آیت میں نماز مراد ہے، چونکہ مراد آیت کی یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف جب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، تو اعتراض کرنے والوں نے یہ کہا کہ بیت المقدس کی طرف نماز جو پڑھتے تھے تم، یا صحیح تھی یا غلط تھی، اگر صحیح تھی تو پھر اب ادھر کیوں پڑھ رہے ہو، اگر غلط تھی تو اب تک کیا کر رہے تھے، تو جب سے اب تک کی تمہاری نمازیں سب بیکار ہوئیں. تو اللہ تعالی نے جواب دیا کہ ادھر جب نماز پڑھ رہے تھے تو وہ بھی میرے حکم سے پڑھ رہے تھے، اب ادھر جو نماز رک کر کے نماز پڑھیں گے یہ بھی میرے حکم سے ہے. پھر اس پر یہ فرمایا صحابہ کو خطاب کر کے کہ تمہارے ایمان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہاری نمازوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. تو ایمان میں نماز کی اہمیت اتنی زیادہ کہ نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا. دین میں خیرخواہی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ پوری خیرخواہی کو دین سے تعبیر فرمایا. الدین النصیحہ، دین تو خیرخواہی کا نام ہے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا اظہار عملاً جب تک نہیں ہوتا تو جب تک اللہ کے ساتھ تعلق کا اظہار بھی نہیں ہوتا. آپ کی اولاد ہے، آپ کے دوست کے سامنے اس کو کچھ نقصان ہو رہا ہے، تو آپ کی پوری دوستی جو ہے وہ اس وقت آپ کے بچوں کے ساتھ اس کے ایٹیٹیوڈ پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر اس نے اس موقع پر ان بچوں کا بھلا کیا ہے تو آپ کہتے ہیں یار تم نے ہماری دوستی کی لاج رکھ لی، دوستی نبھا لی. اگر ہم نے ان کے اس دوست کے بچوں کی رعایت نہیں کی میرے، تو اس کے بابا سے دوستی ہے، ان کا لینے کو میرے کو کیا دینا ہے، ڈوبنے دو ہاؤس میں، اگر ڈوب رہے ہیں تو پانی میں ڈوب رہے تھے کھیلتے کھیلتے مثال کے طور پر. اگر اس موقع پر آپ نے بچا لیا تو آپ نے پوری دوستی کا ثبوت دیا، اور اگر اس موقع پر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو آپ نے نہ صرف یہ کہ دوستی کا ثبوت نہیں دیا بلکہ یہ بتا دیا کہ دوستی بھی بس منافقت کی ہے، ورنہ تو تم ایسا نہ کرتے میری اولاد کے ساتھ. تو الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، حدیث شریف ہے الخلق عیال اللہ. تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں جو ہمارا برتاؤ ہوگا وہ اللہ سے تعلق کی ترجمانی کرتا ہے. یہ لنک ہے دین النصیحہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے خیر خواہی کرنے کو دین کیوں فرمایا. تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو اور میری مخلوق کے ساتھ تمہارا ایٹیٹیوڈ، تمہارا انداز، طریقہ کار ایسا ہے، کیا ایمان رکھتے ہو؟ اور اگر صحیح ہے واقعی تنہا بھی تم ہمارے آدمی ہو. اسی لیے فرمایا کہ تمہارا ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے भाइयों के लिए तुम उस चीज को पसंद न करो जो अपने लिए पसंद करते हो। हत्ता युहिब्बुल अखी मा युहिब्बुल नफ्सी, जो अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने भाई के लिए पसंद न करो जब तक ईमान नहीं है। कुरान हदीस में तो ला युमिनु बल्कि है, लेकिन उलमा किराम तर्जुमा करते हैं लायक मुलो ईमान हो, ईमान कामिल नहीं होगा। इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है दीन में कि हम उम्मत मुस्लिमा के साथ खास तौर पर भलाई करें। अब भलाई करना एक अपने इल्म से, अपने तजुर्बे से है, एक अल्लाह के नबी के इल्म से और उनके तजुर्बे से है। हमारे पास इल्म नहीं है, हमारे पास फहम नहीं है, वो जो उनके पास इल्म है, जो उनके पास फहम है, तो उनके पास में भलाई जो है ना, जो होगी वो सही भलाई होगी। हमारी फहम में जो भलाई होगी वो उतनी सही नहीं होगी। हमारे पास ये है कि भाई चलो वहां जाके थोड़ा सा खाना खिला देंगे, या उनको अपने पास खाने में बुला लेंगे, या कुछ हदिया तोहफा दे देंगे, या खुश कर देंगे। ये है कि कुछ टॉफी वफी ले आके बच्चों को दे देंगे, टॉयज वगैरह दे देंगे, खिलौना दे देंगे। हम तो इस किस्म की भलाई को भलाई का माना में लेते हैं। अल्लाह के पास, अल्लाह के रसूल के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भलाई है वो है दीन की तरफ मुतवज्जे करना। क्योंकि दीन की तरफ मुतवज्जे करना असल कामयाब करना है आदमी को, और असल भलाई उसके साथ वो है। अगर दीन की तरफ मुतवज्जे नहीं किया और वो गैर मुतवज्जे रहा तो कुछ भी उसके साथ होगा उसका कोई फायदा उसको खातिरखा नहीं होगा। क्योंकि दुनिया आरजी टेम्पररी है, वक्ती है, थोड़े दिन वो दुनिया का अगर फायदा उठा के फिर अल्लाह की जहन्नम में जाना पड़ गया, उसको सजा भुगतना पड़ गया, तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। एक जहन्नम का गोता पूरी दुनिया के आयश को ऐसे धो देगा कि कसम खा के बंदा कहेगा कि मैंने दुनिया में कभी आयश देखा ही नहीं। इसलिए अल्लाह के पास खैरखाही ये होती है कि लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ, अल्लाह की दीन की तरफ मुतवज्जे किया जाए। और ये इतना अहम अमल है कि इसको अल्लाह ताला ने, इन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के जौहर के तौर पर, पूरे दीन के कमाल के तौर पर तज़किरा फरमाया कि दीन तो खैरखाही का नाम है। आपने खैरखाही कितनी है, अगर आपने खैरखाही है तो आपने दीन है, अगर आपने खैरखाही नहीं है मखलूक की तो दीन है। और जब खैरखाही शिद्दत से होती है ना तो फिर आदमी थोड़ी कुर्बानी के लिए तैयार होता है, यानी कुर्बानी देकर खैरखाही को जाहिर किया जाता है। कुर्बानी देकर, वक्त की कुर्बानी देकर, जज्बात की कुर्बानी देकर, ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर, मेहनत करके आदमी खैरखाही का मुजाहरा करता है। जुबानी जमा खर्च तो गैर भी कर दिया करते हैं, तो हम फिजिकली तौर पर कितनी खैरखाही कर सकते हैं उससे ताल्लुक का सबूत मिलेगा अल्लाह तबारक व तआला। और असल हमारा ये लोगों मखलूक के साथ खैरखाही करना भी अल्लाह से ताल्लुक दिखाने के वास्ते ही है कि अल्लाह हम आपको चाहते हैं, हम आपके साथ ताल्लुक बनाना चाहते हैं, अपना ताल्लुक रखना चाहते हैं। हम तो बहुत ही गलती पर हैं, हम कमजोर हैं, लेकिन यह है कि आपसे बहरहाल ताल्लुक चाहिए हमको, तो हम आपकी मखलूक के वास्ते थोड़ी बहुत कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जितनी कुर्बानी हम देंगे मेरे भाई, उतना ज्यादा जो है अल्लाह तबारक व ताला के साथ में ताल्लुक को मजबूत करने का वो जरिया बनेगा। अच्छा, फिर हक ताला शानहू का एक करम यह है कि जितना ताल्लुक तुम दिखाओगे इस लाइन से उतना ज्यादा मैं तुमको नवाजूंगा। अपना वादा कर रहे हैं कि मैं तुम्हें दोस्त बनाऊंगा। इसलिए जब आदमी अल्लाह के रास्ते में जाता है, गश्त में जाता है, लोगों से मुलाकात करने के लिए जाता है तो फजाइल है, क्योंकि ये काम मुझे इतना ज्यादा अजीज है, इसकी जरूरत इतनी ज्यादा है, इसकी फजीलत इतनी ज्यादा है। जरूरत भी है, अहमियत भी है, फजीलत भी है कि अगर इस रास्ते में तुमको कोई गुबार लग गया, पॉल्यूशन लग गया, धुआं पहुंच गया, धूल पहुंच गई, उसको मैं जहन्नम के साथ जमा नहीं करूंगा। हर हर कदम पर तुमको सवाब दूंगा, तुम्हारी तस्बीह का सवाब लाखों गुना बढ़ा दूंगा, हजारों नहीं लाखों गुना बढ़ा दिया जाएगा। तकलीफ पहुंच गई, कुछ ठोकर लग गई तो उसका सवाब अलग दूंगा। लोगों की तरफ से कोई बदतमीजी का सामना हुआ उसका सवाब अलग दूंगा। लोगों तक मेरी बात, मेरा पैगाम तुम पहुंचा दोगे तो उसका सवाब दूंगा। और अगर उस पैगाम को कबूल कर लिया लोगों ने तो फिर उस पैगाम के कबूल करने की वजह से जो कुछ वो नेक काम करेंगे उसका पूरा सवाब भी तुमको दूंगा। यानी तुमको ऐसा एजेंट बनाऊंगा कि उनका अकाउंट पूरा तुम्हारा भी होगा, और वो भी 100%, यानी 2% दे रहे हैं कस्टमर बनाने से 4% दे रहे हैं, 5% दे रहे हैं, नहीं 100% जितना उसको सवाब उतना तेरे को सवाब। अच्छा फिर यह कि तुम चूंकि बिगिनर शुरू में लगाने वाले हो तो जो कुछ भी वो करता रहेगा सारे तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा, क्योंकि सिरा हाथ में आया तभी तो उसने काम किया, वरना तो काम कहां से करता हो। तो इससे अंदाजा कर सकते हैं मेरे दोस्तों भाइयों कि कितनी ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी फजीलत बनाई है। इस वजह से अल्लाह से दूर जो बंदे हैं, अल्लाह से गफलत में जो बंदे हैं, उनको हम अल्लाह से करीब करना चाहें, करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह हमको अपने से करीब करेंगे, उनके अंदर से गफलत दूर करके उनमें अल्लाह की याद और अजमत पैदा करने की कोशिश करेंगे, याद दिलाएंगे अल्लाह को, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी गफलत को दूर करेंगे। तो हम अल्लाह से करीब हों, हम अल्लाह तबारक व तआला की याद करने वाले बने, अल्लाह के महबूब बने। अल्लाह ने उसका एक रास्ता यह हमारे लिए बनाया हुआ है और साथ ही साथ ये कि उनका भी भला है, इसमें हमदर्दी ही है, भलाई ही है। कौन है जो इन तक पहुंचकर इनकी बात इन तक बात पहुंचाएगा। बेतलबों तक बेतलबों के पास जाना, बेगरज होकर जाना, उनके सामने अल्लाह ताला की आजमत और बड़ाई सुनाकर उनको अल्लाह की बंदगी की तरफ मुतवज्जे करना और उनके सामने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत बता के उनको हुजूर की गुलामी की तरफ मुतवज्जे करना और उनके सामने आखिरत रख के उनको आखिरत की तरफ फिक्रमंद करना। ये जैसे वो मोहताज है ऐसे हम मोहताज हैं, हम करेंगे अल्लाह पाक इन चीजों से हमें भी नवाज देगा। इसके वास्ते ये गश्त वाला अमल है, करेंगे सब इंशाअल्लाह, बड़ी हिम्मत कर लेंगे, दो दो चार चार भी मुलाकातें करा देंगे तो बड़ा सवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब इसको अदब के साथ में करना है, इसका एक तरीका होता है जमात बना के जाना, एक आदमी इसमें रहबरी करने वाला होना, नए आदमी के पास गए कौन है क्या है आइडिया नहीं होता, रहबरी करना जरूरी होता है। एक रहबर चाहिए, एक जमात का जिम्मेदार चाहिए जो जमात पर कंट्रोल करे, जमात को जमात के साथ में लेके जाए, जमात के साथ में लाए, जमात को सही मशगूल रखे, गफलत का शिकार होने से बचाए, जमात को जिक्र फिक्र की तरफ मुतवज्जे करे, जमात में कोई बात इख्तलाफ की इंतशार की हो जाए तो उस मौके पर उसको हैंडल कर ले। जाहिर है कि अमीर हर वक्त चाहिए होता है, तो इसमें भी एक अमीर चाहिए, एक इसमें बात करने वाला चाहिए होता है। रहबर का काम बहुत अच्छा होता है, रहबर का काम यह है कि उनसे ये बोले कि ये मेहमान सिर्फ आपसे अल्लाह के लिए मिलने के लिए आए हैं, तुम इनसे मोहब्बत से बात सुन लो यार, बात करना हमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बोलना है कि ये आपसे बात करने के लिए आए हैं अल्लाह के लिए और कोई गरज इनकी नहीं है, यार इनसे प्यार से मोहब्बत से सुन लो इनकी बात खत्म। और मुतकल्लिम जो है उसके सामने दीन ईमान की बात करेगा मुख्तसरन, उसमें बताना ये होता है असल में कि देखो भाई हमको अल्लाह ने इस्लाम दिया, चूंकि हम तो मुसलमानों के पास जा रहे हैं, अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया, ईमान दिया, ये बहुत बड़ी नियामत है, इस नियामत को याद दिलाना, क्योंकि नियामत की जहन में से हल्काई हो जाने की वजह से लोग उसको छोड़ देते हैं, फिर यही वजह है कि लोग ईमान को छोड़ रहे हैं, वरना जिसको ईमान समझ में आ गया वो छोड़ ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। उसकी अहमियत बता के उसमें कलमा पढ़ने वाले ने जो अल्लाह से वादा किया है वो याद दिलाना कि हमने कलमा पढ़ा है तो हमने अल्लाह से बंदगी का वादा किया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का वादा किया है। अब इस वादे पर हम कैसे आएंगे उसकी फिक्र करेंगे मैं और आप बैठ के, चलो हम मस्जिद में बात करेंगे, नमाज नहीं पढ़ी है तो नमाज पढ़ लो और फिर नमाज भी हो जाएगी, साथ साथ थोड़ी देर मुजाकरा भी हो जाएगा, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को याद दिलाएंगे तो फायदा होगा। इस तरीके से मौत की बात का थोड़ा तज़किरा उसके सामने करना कि काम आने वाली चीज तो मौत के बाद की जिंदगी है, सब वही दायमी जिंदगी है, वहां काम की चीज ले जाएंगे तो काम आएगी, दुनिया के काम की चीज वहां नहीं चलती। थोड़ा सा आखिरत की फिक्र, थोड़ा सा ईमान की बात और थोड़ा सा जिम्मेदारी की बात उसको करके उसको अपने साथ लाने की फिक्र करना है। रहबर का ये काम है, मुतकल्लिम का ये काम है और रहबर का वो काम है, और अमीर जमात को संभालेगा निभाएगा। एहतियात से जाना, एहतियात से आना, अदब के साथ जाना, अदब के साथ आना जो तरीका है जाने का, खासतौर पर जमात के साथ में जब जाएंगे दीन के काम से तो उस वक्त फिक्र के अंदर यही बात होगी किसी तरीके से सारी इंसानियत को अल्लाह हिदायत दे दे, हमें भी दे दे, जिन भाइयों के पास हम जा रहे हैं उनको भी दे दे, उनके लिए दुआ भी होती रहे। फिर आदमी तस्बीह वगैरह भी पढ़ता रहे, बाजार में से गुजरे तो एक तस्बीह है, आम हालत के अंदर तस्बीह है, जो जिस वक्त की तस्बीहात हुआ करती हैं उस वक्त की तस्बीहात हम मुज़ाकरे में रखें, और फिर जब वहां जाएं तो उसका एक खास अदब है कि घर के अंदर झांकना ताकना ना पाया जाए, वहां जाए तो उसको बादर ना किया जाए, तीन मरतबा ना किया जाए, अगर वो आंसर कर दे तो ठीक है, नहीं आंसर करे तो वापस आ जाओ, बुरा मानने की कोई बात नहीं। रहने के बावजूद सुनना नहीं चाहा تو بھی برا ماننے کی بات نہیں ہے. چلو ہم نے تو ایک فرض تھا جو ہم نے ادا کر دیا, ثواب تو ہمارا کہیں گیا نہیں, چاہے اس نے سنا ہو چاہے نہ سنا ہو. اور کوشش یہ کریں کہ جب وہ مل سکتا ہے جب ہی جائیں, اور جہاں مل سکتا ہے وہاں جائیں, اور زیادہ سے زیادہ نئے آدمیوں سے اگر ملاقات ہو تو یہ سب سے بیسٹ ہے, چونکہ یہ مقصد اس کا یہ ہے. پرانوں کے پاس جا کے بھی بولنا ہوتا ہے چاہتے کہ جو نمازی ہے اس کو داعی بنانا ہے, بھائی چلو تم بھی فکر میں جڑ جاؤ, اور نیا اگر مل جائے تو یہ بہت بہترین اپرچونیٹی ہے, چونکہ دعوت کی حقیقت جب ہی پائی جاتی ہے کامل طریقے پہ جو حقیقت ہے. تو اس وجہ سے اس طرح سے اس سے بات کر کے اور لحاظ کر کے اس کا کوئی برائی کا تذکرہ نہ کرے, اس کا نہ رہبر اس کی برائی کرے, نہ متکلم اس کی برائی کرے, اور نہ وعیدیں سنائے بلکہ اس کو خوشخبریاں سنائے, بشارتیں بیان کرے اس کے سامنے, تسلی دے اس کو اور تما دلائے, لالچ دلائے اللہ کی نعمتوں کی, اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی. اس طریقے سے اگر ہم اس سے بات کریں گے اور نقد لانے کی کوشش کریں گے تو امید ہے کہ وہ آ بھی جائے گا, چونکہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. متکلم جب بات کرے تو سارے مخاطب جو جماعت والے ساتھی ہیں وہ بھی غور سے سننے میں لگ جائیں, اور اپنے لیے بھی دعا کریں, اس جو مخاطب ہے جس سے بات ہو رہی ہے ہمارے متکلم کی, اس کے لیے بھی دعا کریں, اور ہمتن گوش ہو کے خوب توجہ سے اپنے طالب بن کے خود بھی سنیں کہ ہم خود اس کے محتاج ہیں, ہم خود اس بات کو سننے کے محتاج ہیں. واپسی میں پھر استغفار بھی کریں کہ بھائی اس کی جو ذمہ داریاں ہیں پورا کرنا آسان تھوڑا ہی ہے, تو بڑے لوگوں کا کام ہے, ہم گنہگاروں کو یہ سعادت مل رہی ہے اور ہم بھی اس لیے سعادت کو حاصل کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں, چونکہ ہم پاپی ہیں اس لیے کرنا پڑ رہا ہے, اگر پاپی نہ ہوتے تو شاید نہ کرنا پڑتا. یا پاپی جب آدمی نہیں ہوتا ہے تو اس کو بولنا ہی نہیں پڑتا, وہ تو خود ہی یہ کام کرتا ہے, چونکہ اس کا نہ کرنا خود ایک بڑا پاپ ہے, یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی اس مبارک عمل کو ترک کر دے, اللہ کے اس فرض کو چھوڑ دے. یہ بھی ایک فرض ہے, فرائض میں سے یہ بھی ایک فرض ہے. اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ سب کریں گے انشاءاللہ. سب تیار ہیں؟ اب یہ بتاؤ کہ کون کون ساتھی کتنے ساتھیوں سے